الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونحسن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید سے صالح حمید سورہ مائدہ سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اب اس کے ایک متذکرہ آیت و قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقوں کے قبیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے رزق حلال کے حصول اور حرام سے اجتناب سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا جن معاملات سے ہم کو سابقہ پڑتا ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے معاملات ہیں ان میں دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائے تاکہ ہم ان باتوں کا علم بھی حاصل کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں دین اسلام کی رائے इस मामले में क्या है और मालूमात हासिल करने के बाद हम कोशिश करें कि हम उस पर इस तरीके से अमल करें कि जैसा तरीका हमें बताया गया कुरान मजीद कुरान हमीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना में और फिर इन अहकाम पर सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान और उम्मत के औलिया ने किस तरह अमल किया ताकि हम भी उनके मामलात को देखकर अपने मामलात को उसी तरह इस्तेमाल करें और दुनिया और आखिरत में कला और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगु करनी है वो है एहतराम इंसानियत, इसलिए कि हम अपने मामलात में रहन सहन में आपस के ताल्लुकात में इस कदर आगे बढ़ गए कि हमने इंसानियत का एहतराम तर्क कर दिया। किसी मुसलमान भाई को तकलीफ देना तो बहुत अगर मुवाजना किया जाए तो छोटी बात है, हमने तो आदमियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौके पर इस तरह के इकदाम की मजम्मत फरमाई और खुद कुरान मजीद कुरान हमीद में भी इसकी मजम्मत आई। आयत मुकद्दसा का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया इरशाद बारी ताला हुआ मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, कि जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के कत्ल किया और फसादिन फिल अर्ज या जमीन पर फसाद फैलाया वो आदमी ऐसा है इस एक आदमी को कत्ल करने वाला ऐसा है गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और उसके साथ से फरमाया वमन अहयाहा, और अगर किसी ने एक जान को जिला दी फकअन्नमा अहयान्नास जमीअन, कि गोया उसने पूरी इंसानियत को जिला दी। एक आदमी का कत्ल, एक मुसलमान का कत्ल, ये कुरान मजीद को कुरान हमीद ने उसे पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया। तो हमें कुरान मजीद को कुरान हमीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और दीन की तालीम को गोया उस पर अमल करना चाहिए और छोटे छोटे जो इबाद को हम सामान करते हैं उसका भी लिहाज करना चाहिए। और उनके साथ साथ भी इतना बड़ा फैल है कि जिसमें आजकल हम और आप मुबतला है उससे भी हम मुसलमानों को बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में काफी इरशाद फरमाया, चंद रिवायात आपके सामने मैं पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के आपस के मामला के समझाने के लिए फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम अयालुन, के तमाम के तमाम इंसान ये एक कुंबा है। और फरमाया कि अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम, के तमाम के तमाम इंसान ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वह आदमो खलीका मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बनाए गए। बना बताने का मकसद ये था कि जिस तरीके से हम और आप एक कुंबे के अपराध आपस में किस तरह प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, फरमाया कि तमाम के तमाम इंसान क्योंकि सबके सब बनी आदम है लिहाजा सबके सब ऐसे हैं गोया कि एक कुंबा है, एक आयाल है। अन्नासु कुल्लुहुम अयालुन, तमाम के तमाम लोग एक कुंबा है। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को जानते हो कि कौन महबूब है, फरमाया कि जो इस कुंबे के साथ भलाई करे अल्लाह तबारक व तआला को वो आदमी पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहक खून बहाने की मजम्मत के साथ फरमाया, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत में सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल होगा वो खून है। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि जो नाहक खून किया उसका हिसाब दो। शारहीन फरमाते हैं कि आपने नमाज की फजीलत में भी ये रिवायत शुरू होगी कि कल कयामत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा तो सारे लोग यहाँ यू तस्वीर कायम करते हैं और मानते हैं कि ये फरमाया गया कि कल कयामत में सबसे पहले खून के बारे में हिसाब लिया जाएगा तो फरमाते हैं कि मामलात में खून के बारे में पूछा जाएगा और इबादात में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और खून ना इतना बड़ा जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लज़वानु दुनिया अहबनु अलल्लाहि मिन क़त्ले रजुलिन मुस्लिमिन। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जानते हो कि क़त्ले मुस्लिम कितना बड़ा गुनाह है। फरमाते हैं कि ये पूरी की पूरी कायनात अगर मिट जाए, ये कायनात अगर तबाह हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये उससे कमतर है कि किसी मुसलमान को नाहक मार दिया जाए, किसी का क़त्ल कर दिया जाए। और कुरान मजीद में एक और मकाम पर इशारा फरमाया गया कि किसी ने जान को बूझ के अगर किसी को नाहक मारा, किसी को कत्ल किया तो फरमाया पर जगह ओहो जहन्नम खालिदीना फीहा, उसकी जगह ये है कि वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को कत्ल करने के बारे में किस कदर वही इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कि अगर आसमान और जमीन मिलकर किसी एक मुसलमान को कत्ल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जहन्नम में डाल देगा, उन तमाम को आग में लटका देगा। कि अगर ये पूरे आसमान और जमीन वाले मिलकर अगर एक मुसलमान को करें तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को ऐसी भयानक सजा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस वही है जिसके पास माल ना हो, जिसके पास रोटियां ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा वो आदमी मुफलिस नहीं कि जिसके पास माल नहीं, बल्कि फरमाया कि वो आदमी मुफलिस है कि जो कल कयामत में इस हालत में आएगा तो उसके पास रोजा होगा, उसके पास नमाज होगी, उसके पास ज़कात होगी, उसके पास अपने आमाले सालेहा होंगे और साथ ही साथ उसके गुनाहों में यही इतना होगा इतने फला आदमी को गाली दी, इतने फला आदमी का दिल दुखाया, इतने फला आदमी का खून किया और रब्बी करीम उसके उन गुनाहों को गुनाहों के एवज में उन लोगों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। यानी जितनी नेकियां उसने नमाज रोजे की गोया अदायगी में हासिल की वो एक एक नेकी उसके गुनाहों के बदले दे दी जाएगी। और इरशाद फरमाया कि अगर उस आदमी के गुनाह इतने हुए कि इसकी नेकियां खत्म हो जाए तो फिर जिन लोगों के साथ उसने नाइंसाफी की, जिस आदमी को इसने गाली दी, जिसका दिल दुखाया, फिर उस आदमी के गुनाह इसके सर लादे जाएंगे। इसलिए इसने ऐसे अपाल किए। तो हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत में मुखलिस वो आदमी होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपको शहीद किया जाने लगा और लोग आपको कत्ल से डरते हो गए, हजरत उस्मान गनी ने इमाम हुजूर के लिए अपने मकान से सर बाहर निकाला और लोगों से कहा कि लोगों क्या तुम मेरे कत्ल पर आमादा हो, क्या तुम नहीं जानते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को कत्ल करने से मना फरमाया मगर तीन वजूहात की बिना पर कत्ल किया जा सकता है। एक वजह तो ये है कि कोई जानी कोई शादी शुदा अगर जिना करे फरमाया उसे कत्ल किया जा सकता है, और किसी ने किसी बेगुनाह को कत्ल किया उसके खिलाफ में उसे कत्ल किया जा सकता है, या कोई आदमी दीन इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाए उसे कत्ल किया जा सकता है। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने न इस्लाम लाने से पहले कभी गुनाह किया, न इस्लाम लाने के बाद गुनाह किया, और मैंने न किसी मुसलमान को कत्ल किया, और इस्लाम लाने के बाद मैंने इस्लाम को छोड़ ऐसा नहीं कि इस तरीके से सुनकर ये जाहिर हो जाएगा कि तुम मेरा कत्ल करो। पहले बताने का मकसद ये था कि लोगों की हदीस नहीं सुनी कि हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान का कत्ल जायज नहीं। एक और रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत में सबसे बुरा आदमी वो है कि जिसने किसी की दुनिया खराब करने के बदले में अपनी आखिरत खराब कर ली। दुनिया खराब करने का मकसद ये कि आपने तो किसी को कत्ल कर दिया, उसकी दुनिया तो खराब हुई लेकिन उसमें कत्ल होते होते आपकी आखिरत खराब कर दी। और हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत में सबसे बुरा आदमी वो होगा। मुसलमान के गोया कत्ल से बचना चाहिए और मुसलमान की हुर्मत तो ऐसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में हमें ये सबक मिलता है कि इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, जानवर पर भी जुल्म करने से मना किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार किसी जानवर के चेहरे पर मत मारो और उसे दागने के बजाय इस पर दागने को गोया जिस तरीके से अलामत लगा दी जाती है उस दागने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक मौके पर कई सहाबी रसूल हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊंट सरकश हो गया और वो मुझे काटने के लिए दौड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हुजूर उस आदमी के साथ उसको जानवर के करीब गए। जब उस ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब आते देखा, वो आवाज निकालता हुआ अपने सर को हिलाता हुआ हुजूर के कदमों में अपने सर को रख देता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुजूर अपने काले हजरत उस ऊंट के करीब रखते हैं और उसके बाद उसके मालिक से फरमाते हैं कि जानते हो कि ये क्या शिकायत कर रहा है? ये शिकायत ये कर रहा है कि मेरा मालिक मुझसे अच्छा सलूक नहीं करता। और फरमाया जान लो कि आज के बाद कभी उसको बदसलूकी मत करना। तो जानवर के बारे में जो दीन हमें इस तरीके से सलूक रवा रखने के लिए कहता हो, इंसान के बारे में कितना ज्यादा हमें इस बात में ताकीद करता होगा कि इंसान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। जानवरों के बारे में आया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बरमना कहा करते थे कि अगर उमर की हुकूमत में कोई एक बकरी खारिश की वजह से अगर उसका इलाज ना हो सके, किसी एक बकरी को उसकी बीमारी का खारिश का इलाज अगर ना हो सके तो उमर को ये खौफ है कि कहीं कयामत हमारा का बताना उससे पूछेगा जाए उमर इनकी हुकूमत में एक बकरी कैसे बे इलाज रह गई। अजीजान मोहतरम आपने देखा कि मुसलमानों का दीन तो जानवरों के बारे में इस कदर मोतबई और इतना मोहताज है तो इंसान की अजमत का क्या आलम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कल कयामत में एक औरत सिर्फ इस वजह से जहन्नम में जाएगी कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया था और ना उसे खाने के लिए दिया, ना उसे पीने के लिए दिया और ना ही उसे खुला छोड़ा ताकि वो अपना रिज़्क खुद हासिल कर ले। इस बिल्ली को बांधने की वजह से कल कयामत में वो औरत जहन्नम में जाएगी। और हदीस पाक में एक और वाकया हमें मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स प्यासा कहीं जा रहा था, जंगल में पानी की तलाश में था। अचानक उसे एक कुआं नजर आया, उसने जब झांक करके देखा तो उसमें पानी था। उस कुएं में उतरा और उसने उतरने के बाद उसने अपनी प्यास को बुझाया और प्यास बुझाने के बाद कुएं से जब दोबारा बाहर निकला क्या देखता है कि सामने एक कुत्ता प्यास की वजह से गिर गिरा रहा है। उसे रहम आ गया, उसने सोचा कि जिस तरह मुझे प्यास में परेशान किया उस कुत्ते को भी प्यास में परेशान किया है। चुनाचे उसने देखा कि कोई बर्तन मिले कि जिसमें कुत्ते के लिए पानी भरा जाए और कोई बर्तन उसे न मिला। उसने अपना चमड़े का मोजा उतारा और उतारने के बाद उसने पानी भरा और पानी भरने के बाद कुत्ते को पिलाया। हुजूर फरमाते हैं कि जानते हो इसकी एक नेकी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बख्शीश फरमा दी। आपने देखा कि एक जानवर के बारे में अगर कोई इस तरीके
फरिश्ते से बर्ताव करे तो उसकी बख्शीश का सामान हो जाता है, और अगर जानवर को बदसलूकी करे, जानवर को जुल्म करे, तो आदमी जहन्नम का हकदार हो जाता है। तो जो जीन जानवरों के बारे में ऐसा सलूक करने के लिए कहता हो, तो वो इंसान की अजमत का कितना बड़ा फायल होगा, और हमें आप एक इंसान को कत्ल कर दे कितना बड़ा जुर्म होगा। अजीजान मोहतरम साहबा इकराम अलीगढ़ दीवान ने और औलिया उम्मत ने इस तरीके से इंसानों की गोया एहसान का हमें दर्ज दिया। हमें वाकयात में देखा है कि हजरत आप दमिश्क के इलाकों में मौजूद थे, शाम के इलाकों में मौजूद थे, मुसलमानों की वहाँ हुकूमत थी और मुसलमानों ने वहाँ गैर मुस्लिमों को जब अपने शहर में रखा तो उनसे खराज वसूल किया करते थे। इस्लामी हुकूमत में जब गैर मुस्लिम आ जाए तो गैर मुस्लिमों को मुसलमान आवाम दिया करते थे और उनके टैक्स वसूल करते थे, उनके टैक्स अदा करो, हम तुम्हारी जान और माल के मुहाफिज है। चुनाचे हजरत खालिद इब्न वलीद ने एक मौके पर इत्तला दी कि रूमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर मुसलमानों को तहजीब करने के लिए हमला आवर होने वाला है, और वो बहुत बड़ा लश्कर है, मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और खौफ है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जब मुसलमानों के फितर सालार हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये इत्तला मिली, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रह ने सबसे पहले उन जुमियों के पास आ गए, उन गैर मुस्लिमों के पास गए और जाने के बाद उनसे कहा कि हमने तुमसे टैक्स वसूल किया था, हमने तुमसे खराज लिया था, और ये इसलिए था कि हम तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करें, लेकिन हमें इत्तला ये मिली है एक बहुत बड़ा लश्कर हम पर हमला आवर होना चाहता है, और ये लश्कर इतना बड़ा है और हमारे पास इतनी फौज नहीं, हमें खौफ है कि हम उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा है जिन्हें ये वो रकम लो जो तुमने हमें जीत ली, इसलिए कि अब हम तुम्हारी जान और तुम्हारी माल की हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा अपना टैक्स वापस ले लो। कुफार पर इस बात का इतना असर हुआ, उन्होंने देखा कि मुसलमान ये इंसानियत की हिम्मत के इतने बड़े भाई कि हमसे टैक्स वसूल किया कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और जब हिफाजत करने का खौफ हुआ कि हिफाजत न कर सकेंगे तो टैक्स की रकम वापस कर देते हैं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में कुछ जुमियों ने आकर के ये शिकायत की कि या अमीर मोमिनीन, आपके फला सुबह सालार ने हमारा इलाका खाली करवा दिया और उसकी जगह मुसलमानों को आबाद कर दिया, आप इस बात की तहकीक कीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आसिफ को भेजा और उस इलाके के गवर्नर को हुक्म दिया कि वहाँ अदालत कायम की जाए और इस मामले की तहकीक की जाए, और अगर जज ये फैसला दे दे, अगर आदी ये फैसला दे दे कि इनका कहना दुरुस्त है, तो मुसलमानों को वहाँ से हटाकर उनको आहार किया जाए। चुनाचे गवर्नर ने अदालत कायम की और आदी ने तमाम मामला को सुनने के बाद ये फैसला किया कि मुसलमानों को यहाँ नहीं, इनको हटाकर गुंडों को बिठाया जाए। जब ये हुक्म किया और गवर्नर ने इस हुक्म की तामील में जब मुसलमानों को हटाना शुरू किया, उन जुम्मियों ने मुसलमानों के बर्ताव को देखकर, मुसलमानों के सलूक को देखकर कि ये आदमी की गोया हुरमत के करे फाइल है, उन लोगों ने कहा कि रुक जाओ, हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर के रहेंगे, इसलिए कि तुम्हारे हाकिम का बर्ताव हमने देखा कि उसने इंसानी जान को तकलीफ से बचा लिया, लिहाजा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मुसलमानों का बर्ताव था, और जीन मदीन ने जो इंसानियत की हुरमत बयान की, मुसलमानों ने इस तरीके से उस पर अमल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आदमी की तकलीफ में बहुत बड़ी बात है, किसी को तकलीफ न पहुंचे, अपनी हुकूमत में मदीने की गलियों में रात में गश्त किए करते थे कि कहीं कोई आदमी मुश्किल का शिकार न हो। हजरत उमर एक दिन कहते हैं कि मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे, एक मकान से कहीं रोने की आवाज आई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु करीब गए, क्या देखा कि एक आदमी मकान के बाहर टहल रहा है। आपने पूछा कि क्या मामला है, वो कहने लगा कि बस मैं एक गरीब हूँ और अमीर मोमिनीन को मिलने आया हूँ, फला देहात फला गांव का रहने वाला हूँ। हजरत उमर ने पूछा कि ये अंदर से आवाज क्यों आ रही है, उस आदमी ने हजरत उमर को झिड़क दिया, और कहा कि जाओ मियां हर बात बताने के नहीं होते और चलते बोलो यहाँ से। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला भाग गए कि ये आदमी परेशान हाल है। इकरार किया कि बताओ क्या मामला है। उनके इकरार पर उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी दर्द गे का शिकार है और जो करीब विलादत होने वाली है वो तकलीफ का शिकार है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला और अपने घर गए और अपनी अहलिया हजरत उम्मे कुलसूम बिन्त अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को लाए और उस औरत के पास भेजा और कुछ कुछ सामान लेकर आए। लकड़ियां जलाने के बाद खाना पकाने लगे और खाना पका ही रहे थे कि अंदर से आवाज आई कि या अमीर अल मोमिनीन अपने रफीक को खुशखबरी सुनाइए तो उसके यहाँ बेटा हुआ है। तब उस आदमी ने आवाज सुनी कि अंदर से औरत ने यही कहा कि या अमीर अल मोमिनीन तो फौरन सौंक गया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खंभे में गिर गया। तो मैंने आपसे बदतमीजी की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी परेशानी देखकर तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है। अज़ीज़ान मोहतरम अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहतराम इंसानियत खाने दर किया हमारे दुनिया अकाबरीन ने उस पर कुछ तरीके से अमल किया और उनके अमल को देखकर आज अगर हम अपने अमल को देखें तो हम मुसलमान का हम आपस में कलमा दो एक दूसरे का कत्ल करें ये कितनी बुरी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया मेरे सहाबा कयामत उस वक्त तक नहीं आ जाती जब सबके हर्ज की कसरत ना हो जाए। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हर्ज क्या है। फरमाया कि जब तक कत्ल की कसरत ना हो जाए उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। जो या कयामत की निशानियों में से है और आज अगर आप अपने एक गेट का जायजा लें तो आप देखेंगे कि कत्ल की यकीनन कसरत हो चुकी है। आज आदमी मजहब के खिलाफ को तो दूर रखिए, आज मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है और इतना बड़ा जुर्म कर रहा है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सी फकअन्नमा कतला अन्नास जमीअन। तो इस वो आदमी कि जिसने एक जान को कत्ल किया वो ऐसा है कि गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आइए जो आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की इसके सियाक के सिलसिले में मुफस्सिरीन फरमाते हैं और इसके पहले जो मजमून चल रहा है कुरान मजीद कुरान हमीद ने इजमालन इस वाक़े को बयान किया। मुफस्सिरीन ने तफसीर को उसे बयान किया और सदरुल आबादी बदरुल ममासी मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर फज़ाइनुल इरफान में तफसीर रूहुल बयान के हवाले से इसे नक़ल किया। मैं उन आयात का तर्जुमा नहीं करता सिर्फ मफ़हूमन बयान करता हूँ कि वाक़िया क्या हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे एक का नाम हाबील और एक का नाम आबील था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया औलाद की तरह आगे बढ़ी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस वक्त कोई और इंसान तो मौजूद नहीं था चुनाचे जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया उम्मीद होती और जब हमल रहता तो एक हमल में एक लड़का और एक लड़की तवल्लुद होते, दूसरे हमल में भी इसी तरह एक लड़का एक लड़की तवल्लुद होते। चुनाचे ये तय हुआ कि एक हमल की लड़के का दूसरे हमल की लड़की को निकाह होता। इसलिए कि अगर ऐसा न होता तो ये नकली कैसे आगे बढ़ती। चुनाचे एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि अपने एक बेटे आबील का निकाह उस लड़की से किया जाए जो हाबील के साथ पैदा हुई और हाबील का निकाह उस लड़की के साथ किया जाए जो हाबील के साथ पैदा हुई। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये चाहा तो हाबील ने देखा कि जिस लड़की से मेरा निकाह हो रहा है उसके मुकाबले में ये लड़की ज्यादा खूबसूरत है। तो हाबील ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके साथ तुम्हारा निकाह करना दुरुस्त नहीं, ये तुम्हारी बहन है। लेकिन आबील ने ये कहा कि ये बात आप किस तरह कह रहे हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो ऐसा करो कि तुम दोनों अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए समझ लो कि अल्लाह तबारक का वताला का इशारा यह है कि ये उस लड़की से शादी करेगा। और उस दौर में ये था कि जब कुर्बानी की जाती कोई नजर पेश की जाती तो उसकी कबूलियत का इस तरह ऐलान होता कि उस नजर को और उस शहर को आसमान से आग आती और वो उसे उठा करके ले जाती। चुनाचे दोनों भाइयों ने जब कुर्बानी की, हाबील ने एक बकरी कुर्बान की और हाबील ने जौ के पीछे गोया कुछ जौ कुर्बान की। जब दोनों ने कुर्बान की तो हाबील की कुर्बानी यानी बकरी को आसमान से आग आई और उसे उठा करके ले गई। तो हाबील ने जब ये देखा कि वो हार गया उसमें हसद पैदा हो गया कि मेरा भाई हाबील मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। उसने इरादा किया कि वो हाबील को कत्ल कर दे। हाबील ने कहा कि मेरे भाई तुम मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो, तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से मुझ पर हाथ बढ़ाओगे लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ। सुना से हाबील और काबील का जो मुकाबला हुआ लेकिन काबील ने उसकी बात न मानी और हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब परेशान है कि क्या करे और उसे ये भी मालूम नहीं था कि कत्ल करने के बाद अब लाश को क्या करते हैं। सुना से कुरान मजीद और कुरान हमीद ही में आगे चलकर है मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो कब्बे को भेजा और वो दो कब्बे आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक कब्बे ने दूसरे को मारा और वो मर गया। उसके बाद जिस कब्बे ने मारा था उसने जमीन में अपनी चोट और अपने कमजोर को कुरेदना शुरू किया और कुरेद कुरेद कर एक गढ़ा बनाया। गढ़ा बनाने के बाद उस कब्जे को उसमें डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब आदिल ने देखा कि ये बनाने का ये तरीका है और अफसोस करता रहा कि मैं तो इस कब्जे की तरह भी ना हो सका कि जिसने अपने कब्जे को दफनाने का तरीका मुझे सिखाया। और ये आदिल ने अपने भाई हाबील को इस तरीके से दफनाया और उस इलाके को छोड़ करके चला गया। सलाम ने इस फेल को उसे धिकार दिया और वो चला गया। उसके बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो यमन के शहर आदम पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद शैतान ने उसे धरकाया और शैतान ने ये कहा कि तुम्हारा भाई हाबील जानते हो कि उसकी कुर्बानी क्यों कबूल हुई। उसने कहा कि उसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई कि वो आग की पूजा किया करता था। सुनाकर हाबील ने आग की पूजा शुरू कर दी और आग की पूजा करते करते एक जमाना गुजरने के बाद हाबील के एक बेटे जो आंखों से अंधा था उसने पत्थर मारकर और हाबील को हलाक कर दिया और वो कुदर रशीद में मारा गया। अजीजान मोहतरम ये कुरान मजीद को कुरान हमीद में बयान किया गया और आपने पहले भी समाज फरमाया कि कुरान मजीद को कुरान हमीद में जो किस्सा बयान किए गए उनका मकसद ये नहीं कि किस्सा पढ़ाई की जाए बल्कि उनका मकसद ये होता है कि आदमी इबरत हासिल करे उससे कुछ सीखे। और कुरान मजीद को कुरान हमीद ने इस किस्से को बयान करने के बाद भी हमें कुछ सीखने के लिए दर्द दिया। आप जानते हैं कि जब हाबील को हाबील ने कत्ल किया तो ये कितना बड़ा जुर्म था। कहते हैं कि दुनिया में होने वाला सबसे पहला ये कत्ल था और इस कत्ल का नुकसान कितना हुआ। फरमाते हैं कि जिस वक्त हाबील ने हाबील को कत्ल किया तो 7 दिन तक जमीन पर जलजला आता रहा और हाबील जो चेहरे से बहुत खूबसूरत था कहते हैं कि कत्ल करते ही उसका चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो गया, वो काला हो गया। और फरमाते हैं कि जब कत्ल किया गया इस दुनिया में मौजूद जितने कलीगे थे उनमें बेचैनी सी हो गई, एक घबराहट सी हो गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसका इतना सदमा पहुंचा। कहते हैं कि 100 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हंसी नहीं आई। तो अजीजान मोहतरम आपने देखा कि दुनिया में होने वाला ये सबसे पहला इतना बड़ा जुर्म था। अल्लाह का मसाला में जब ये कत्ल हुआ तो 7 रोज तक दुनिया में जलजला आता रहा और करीब करीब हैरान है वो आदमी बदसूरत हो गया। और कत्ल करना कितना बुरा है, देखिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद था, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था लेकिन जब उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और कत्ल किया तो वो काफिर और मुशरिक होकर के मरा, उसे ईमान नसीब नहीं हुआ। अजीजान मोहतरम ये तो हमारा दीन है जो हमें हुर्मत इंसानियत का दर्स देता है लेकिन अजीजान मोहतरम अपने आगे पीछे अगर हम जायजा लें तो हम इस बात को भुला बैठे हैं, हमने इस बात को अक्सर अपने जहन से निकाल दिया है कि किसी आदमी का कत्ल ये मामूली की बात है। मामूली मामूली बातों पर आज आदमी का कत्ल हो जाता है और इतना बड़ा गुनाह करके हम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देते हैं। और उलमा यहाँ ये भी बयान करते हैं कि ये को फरमाया गया कि एक जान को जिसने कत्ल किया वो या उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, कि ये बात अकल में बज़ाहिर नहीं आती कि एक आदमी का कत्ल तो एक आदमी का कत्ल होता है, लेकिन पूरी इंसानियत का कत्ल ये तो बहुत बड़ी बात है। उलमा फरमाते हैं कि एक आदमी का कत्ल जब उसने किया तो उसने उस इंसान की हुरमत को पामाल किया, उसने उस इंसानियत की हुरमत को पामाल किया, और जब उसने एक कत्ल किया उसने और लोगों को इस कत्ल पर आमादा किया और लोगों को कत्ल करने को जुरी बनाया, इसलिए इसकी सजा ये रखी गई। और इसलिए ये फरमाया गया कि दुनिया जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने जो कत्ल किया, 7 रोज तक जलजला आता रहा। और ऐसा हुआ कि जब एक आदमी को उसने कत्ल किया, अभी शरीफ में आता है कि कोई आदमी हमारे जीवन में कोई अच्छा तरीका ईजाद करे तो उस पर अमल करने का उसको सवाब मिलेगा, उसे ईजाद करने का उसको सवाब मिलेगा। जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे हर एक का सवाब खुद उस आदमी को मिलेगा कि जिसने बुरा उसे बुरा नेकी को ईजाद किया। और उसको मुतसिलन फरमाया कि कोई आदमी हमारे जीवन में बुरा काम ईजाद करे तो उस बुरा काम ईजाद करने पर उसे गुना मिलेगा, उस पर अमल करने पर उसे गुना मिलेगा। जितने लोग उस पर अमल करेंगे हर एक को अपना गुना तो मिलेगा, लेकिन उस बुराई ईजाद करने की वजह से एक एक का गुना फिर उसे मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की रोशनी में अब लीजिए तो इस वक्त लेकर आज तक जितने कत्ल हुए हर कत्ल का एक एक गुना फिर उस आदिल को मिलेगा तो जिसने उस कत्ल को ईजाद किया, इसलिए कि उससे पहले कत्ल हुआ नहीं था। आदिल ने कत्ल करके दूसरे लोगों को कत्ल करना सिखा दिया। अजीजान ने ग्राम में उसी लिए फरमाया गया कि मन कत्ल नस्ल बिराई नस्ल, कि जितने एक जान बगैर किसी जुर्म के वो जब बगैर जान के कत्ल कर दी वो ऐसा है तो कान नमा कत्ल ना का जमुआ, तो वो ऐसा है कि दुनिया उसने पूरी इंसानी को कत्ल किया। और उसके साथ फरमाया वो मन सियाह जमिया, तो जितने एक जान को जिला दी वो आदमी ऐसा है जो या उसने पूरी इंसानियत को जिला दी। अजीजान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें इतना बड़ा मनसब अता किया, बलकद करमना बनी आदम, हमें इतनी तकरीम दी और हमें इंसानों में हमें जितनी मखलूकात है तमाम ने अफजल और आला बनाया, फिर इस अफजल और आला होने के बाद हम अगर ऐसा फेल कभी करें, हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और ऐसा गुनाह करें कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देता है, अजीजान मोहतरम हमें इससे परहेज करना चाहिए। हमें अपने दीगर मुसलमान भाइयों को इस बुराई के बारे में बताना चाहिए कि इतना बड़ा गुनाह है तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाज़िल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को महफूज फरमाए और दीन के मतलब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।